करके सब सामने खड़े थे, शंख बजा रहे थे, भेरियां बजा रहे थे। अब आए, अब आए। उस समय में एक हाथ में छत्ता ले लिया और भाई ये चंवर ले लिए और वो राम जी महाराज की प्रतीक्षा करने लगे। उस समय में भरत जी महाराज उपवास से जो कृष हुए हुए थे, बार बार आकाश की तरफ देखते हैं और हनुमान की तरफ देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं, हनुमान की तरफ देखते हैं, और सब लोग जो है यूं शंख और दुंद भी बजाते हैं। लेकिन भाई भरत के मन में तो बड़ा उतावलापन था। भरत ने कहा, अरे ए बंदर, सच्ची बता, तूने कोई बंदरपना तो नहीं कर दिया है? सच्ची से तुम बड़े चंचल होते हो, तुम तो कहते हो बस अब आ ही रहे हनुमान, कहाँ आ रहे हैं? सच्ची बता दो, मजाक तो नहीं किए तुमने? हनुमान जी ने कहा कि महाराज, मजाक तो बराबर वालों के साथ होती है, हम आपसे क्या मजाक करेंगे। तो भाई दिख नहीं दे रहा है, ये देखो कोलाहल हो रहा है, ये कोलाहल हो रहा है। इससे पहले ये देखो आपके वृक्ष पहले कैसे थे, इन वृक्षों में कितने अच्छे पके पके फल लग गए, कल तक नहीं थे, अभी अभी फल क्यों लग गए? इनमें देखो शहद टपकता है, ये आपके सूखे वृक्ष हरे हो गए, पत्ते वाले हो गए, ये सब भरद्वाज ऋषि की कृपा से हुआ, वहां तक आ गए हैं। और ये देखो एक गहरी आवाज आ रही है, ये बंदर हर्षित होकर किलकारियां मार रहे हैं, वो आवाज आ रही है, ये गोमती नदी तक आ चुके हैं। अब भाई उनके पास यही मोबाइल था और तो कोई चीज थी नहीं। ये देखो ये धूल उड़ रही है, ये आकाश में दबी दबी जो धूल उड़ती है, ये धूल भी महाराज सालवन की धूल है। और ये देखो ये स्पष्ट बंदरों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, मैं कोलाहल के आवाज से पता लग रहा हूँ ये कौन से बंदर का चिंगा, कौन से बंदर की जो आवाज है, कौन से बंदर की आवाज। ये देखो विमान आ गया, आई आकाश में विमान आ गया, विमानम पुष्पकम दिव्याम, ये दिव्य पुष्पक विमान ये ब्रह्मा जी ने बनाया था। ये देखो ये रावण आदि के पास में था, ये पहले कुबेर जी के पास था, फिर कुबेर को हरा करके रावण ने अपने पास रख लिया, विभीषण ने राम जी के लिए आपके प्राण न निकल जाए इसलिए आपके लिए भेजकर आपको कृतार्थ करने के लिए विमान आया है। इस विमान में वो देखो वो सुग्रीव बैठे हैं, वो देखो वो विभीषण बैठे हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज उछल उछल करके भरत जी के पास खड़े होकर बता रहे थे, ये वो है, ये वो है। तो भाई सब तो और तो किसी को जानते नहीं थे, वो तो तीन को ही जानते थे वहां के लोग। रामोयम, ये देखो ये राम जी रहे, राम जी रहे। तो भाई जो हाथी पर से था वो हाथी से नीचे कूद गया, घोड़े पर था वो घोड़े से नीचे कूद गया, रथ वाले रथ से नीचे कूद गए, हाथी घोड़ा सब भूल भाल गए कि हम कौन है क्या है। देखो भगवान से मिलना होता है तब ऐसा ही होता है, वो अपनी विस्मृति होती है, यही भगवान से मिलना है। और उस समय जो है भरत जी महाराज भी भूल गए, भरत जी महाराज ने दृष्टि पड़ते उनको प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद लंबे पसर गए जमीन पर बड़े आनंद में। भरत जी महाराज उठे और उठ करके प्रतीक्षा करते रहे कब विमान आए, कब विमान आए। और ज्यों ही वो विमान जमीन पर आया, भरत जी महाराज उछल करके राम जी के पास चले गए और राम जी ने भरत जी को अपने पास खींच लिया और खींच करके राम जी महाराज ने भरत को अपने छाती से लगा लिया। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लक्ष्मण जी महाराज ने स्नेह का जल लेते हुए भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और सीता जी थी, सीता जी के दर्शन करके सीता जी को प्रणाम किया। भरत जी महाराज ने प्रेम और स्नेह के कारण से सीता जी की आंखें भी तरतर हो गईं। और उसके बाद भरत जी ने हनुमान के कहने से, ये हमारे सुग्रीव हैं, अच्छा अच्छा आप सुग्रीव हैं, ये जामवंत जी हैं, ये अंगद जी हैं, ये मैंद हैं, ये द्विविध हैं, ये नील हैं, ये ऋषभ हैं, सुषेण हैं, नल हैं, गवाक्ष हैं, गंधमादन हैं, शरभ हैं, पनस हैं, ये सब के सब आए और भरत जी से बड़े प्रेम से मिले। ये सारे बानर मनुष्य रूप में वहां पर प्रकट हो गए, सब बंदर मनुष्य हो गए। और फिर भरत जी महाराज का कुशल क्षेम पूछा। भरत जी महाराज का कुशल क्षेम पूछने के बाद भरत जी ने कहा, आओ सुग्रीव, इतने दिन तक हम चार भाई थे लेकिन आपके मिल जाने के बाद हम पांच भाई हो गए हैं, क्योंकि जो हमारे प्रति सौहार्द रखता है वो भाई से कम थोड़ा ही होता है, मित्र भी तो भाई ही होता है। और भाई होकर के भी कोई यदि शत्रुता करता है तो वो भाई थोड़ी, वो तो शत्रु है। विभीषण जी महाराज को देखा, भरत जी ने कहा ओहो आप विभीषण जी, आप नीति पर दृढ़ रहने वाले, हनुमान ने मुझे सब बात बताई थी, आप जैसा काम तो आप ही कर सकते हो, इतने बड़े ऐसे वातावरण में आप भाई का विरोध करके धर्म के पक्ष में आए, हे विभीषण मैं आपको प्रणाम करता हूं। विभीषण जी महाराज भी मिले, अब भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न जी सबके चरणों में गिरे, राम जी के चरणों में गिरे, लक्ष्मण जी के चरणों में गिरे, सीता जी के चरणों में गिरे, और शत्रुघ्न जी खूब रोने लगे। राम जी ने बहुत प्यार किया छोटे भाई का, उसके सिर पर हाथ फेरा, और लक्ष्मण जी ने भी बहुत स्नेह किया, सीता जी ने खूब आशीर्वाद दिया। शत्रुघ्न जी किसी से कुछ नहीं बोले, वो तो बेचारे छोटे थे, रोने ही रोने लग गए। फिर पुरोहित के पास में भगवान श्री राम आए और पुरोहित जी को प्रणाम किया, और पुरोहित जी ने आशीर्वाद दिया कि हे कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। इतने में भरत जी महाराज वो दोनों पादुका लेकर आए और राम जी के चरणों में रख दिया। चरणों में रख करके भरत जी ने कहा महाराज ये चरण पादुका नहीं है, ये आपका राज्य ही आपको समर्पित किया गया है, आपकी धरोहर मेरे पास 14 वर्ष से थी, और इसके पीछे जाने क्या क्या हुआ सब हमको जो है हनुमान ने सुना दिया था, मैं महाराज कृतार्थ हो गया। ये अयोध्या आप संभालिए, अयोध्या का धन पहले से 10 गुना हो गया है, सब प्रकार की बढ़ोतरी है, लेकिन हमने उसको बढ़ोतरी नहीं माना, अयोध्या की तो असली बढ़ोतरी आज से प्रारंभ हुई है। अब भाई भगवान उस विमान से नीचे उतरे और नीचे उतर करके उस विमान से कहा कि हे विमान अब तुम जो है कुबेर के पास चले जाओ और वहां जाकर तुम निवास करो। विमान उस समय में उत्तर की तरफ चला गया और इधर राम जी महाराज अपने भाइयों सहित और अयोध्या के निवासियों सहित वहीं पर विराजमान हैं, और अब राम जी के राज्याभिषेक की तैयारियां करने के लिए गुरुदेव वगैरह तो विचार करते हैं, सब तैयारियां हो रही हैं, और राम जी महाराज राज्याभिषेक के लिए अब अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये अब कल राम भगवान का राज्याभिषेक हो जाएगा। आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भगवान के राम राज्याभिषेक महोत्सव का श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज के शब्दों में जैसा वर्णन हुआ है उसके अनुसार उत्सव मनाने का दिन है। यह उत्सव हम लोग देखते तो यहां इस पृथ्वी पर हैं, परंतु भगवान के राज्याभिषेक का उत्सव तो सदा ही भगवान के सर्वव्यापकता से होता ही रहता है। अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भगवान ने अनंत अनंत बार रामलीलाएं की हैं और उनका अनंत अनंतों बार उत्सव होता रहा, हो रहा है और होता रहेगा। आपकी सेवा में नम्र निवेदन किया था कि भगवान की कोई ऐसी लीला नहीं है जो भूतकाल की हो, सब लीलाएं वर्तमान में हो रही हैं। किसी ब्रह्मांड में भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है, किसी ब्रह्मांड के त्रेता में भगवान को वनवास दिया जा रहा है, किसी ब्रह्मांड में युद्ध हो रहा है, किसी ब्रह्मांड में उत्सव हो रहा है, ऐसी भगवान की लीलाएं चलती आ रही है, चलती आ रही, चलती रहेंगी। लीला के इस प्रवाह में हम लोग भी उसका स्मरण करके, श्रवण करके, अपने अंतःकरण में उन लीलाओं को पैदा करके जिस दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए अपने लोग आए हैं, ये दिव्य आनंद केवल यहीं तक सीमित न रहे, ये सदा सदा तक हमारे साथ रहे, उसी के लिए ऐसे आयोजन होते हैं। बड़े आनंद की बात है, भगवान के इस अभिषेक महोत्सव में आप लोग जिस उत्साह के साथ पधारे हैं, तो इससे यही आशा की जाती है कि महापुरुषों की एक अव्यक्त कृपा का आश्रय लेकर अपने को ये आनंद सदा ही अपने हृदय में मनाते रहना चाहिए। संसार के झंझावात आते ही रहते हैं, संसार तो है ही दुखालयम, इसके ऊपर साइन बोर्ड लगा हुआ है। महर्षि ये बात बहुत बोलते थे कि दुखालय में आप सुख क्यों ढूंढते हो, जैसे पुस्तकालय में जाकर कोई वस्त्र ढूंढे, वस्त्रालय में जाकर कोई अन्न ढूंढे, अन्नालय में भोजनालय में जाकर कोई वस्त्र ढूंढे, तो कहेंगे कि भाई आप इसके ऊपर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है उसको देखो तो सही। तो भगवान ने संसार के ऊपर एक सर्टिफिकेट लगा दिया कि दुखालयम, दुख पाना है तो संसार में आओ, इस संसार में दुख ही दुख मिलेगा, तुम्हें संसार में सुख नहीं मिल सकता, यह इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है। परंतु इस साइन बोर्ड को हम लोग और दृष्टि से देखते हैं और दुखालय की जगह हम लोग सुखालय की बात सोचते हैं। परंतु उससे भी बड़ा हमारा हृदय है, जिस हृदय में भगवान के भक्त और भगवान आनंदालय का स्थापना करते हैं, आनंदालय की यहाँ खूब आनंद ही आनंद है। पर वो आनंद का खजाना कब होगा, जब हम लोग इस प्रकार के आयोजनों में आनंद लेकर अपने को कृतार्थ करेंगे। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि वाल्मीकि रामायण का आज समापन समारोह भी है और जो चातुर्मास का अपने लोगों ने विचार किया था उसका ये आज अंतिम दिन भी है। चातुर्मास के लिए 2 महीने होते हैं, तो संतों ने महात्माओं ने कृपा करके, भगवान ने कृपा करके, आप लोगों ने सहयोग देकर के इसको सवाया बनाया, तो 2.25 महीने का चातुर्मास कर दिया। ये सवाया अपने लोगों के जीवन में सदा आगे बढ़ता रहे, ऐसा अपने को प्रयास करना चाहिए। रामराज्य अभिषेक की कथा कहें उससे पहले अपने पास, क्योंकि आपने अयोध्या तो यहीं बना दी और वाल्मीकि जी महाराज ने अयोध्या में भगवान श्री राम को अपनी कथा सुनाई। किनके द्वारा सुनवाई? लव और कुश के द्वारा। देखो, लव और कुश वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम को अयोध्या में कथा सुनाते हैं, परंतु ये कहीं नहीं आया कि लव और कुश ने कथा समाप्त कर दी, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता नहीं है। कथा होती है बस होती है। जब वाल्मीकि जी महाराज ने भी लव और कुश जैसे वक्ता को, राम और उनके भाइयों जैसे श्रोताओं को ये कथा सुनाते बंद नहीं करते हैं, तो भाई ये कथा तो इसका अर्थ है कि चलती ही रहती है, चलती ही रहनी चाहिए। तो ये चलती ही कैसे रहे कि हमें इसका ध्यान आए, इसका कथा का जो स्वरूप है, कथा की बातें हमारे मन में बैठे। भगवान श्री राम ने जो अवतार लिया था वो मर्यादा की स्थापना के लिए किया था। तो बड़े महापुरुष हैं, वे जैसा आचरण करते हैं वो आचरण अपने जीवन में आए। भगवान की जो लीलाएं हमारी समझ में नहीं आती उन लीलाओं के लिए कभी नहीं कहा जाता कि तुम भी करो, लेकिन जो लीलाएं समझ में आती हैं, जो लीलाएं हमको बहुत प्रिय लगती हैं और जो हम लोगों को सन्मार्ग पर लगाने के लिए ही भगवान ने की है, वो लीलाएं तो भाई हमारे जीवन का आदर्श बननी चाहिए। भगवान ने देखो गृहस्थ में जन्म लेकर गृहस्थी होकर कितना अच्छा व्यवहार किया, ये हमको भगवान के चरित्र से सीखना चाहिए। तो लव और कुश भगवान जो कि लीला करने वाले हैं उनको उनकी लीला सुनाते हैं। आपको बीच बीच में बताया था कि जब जब भी सबको शांति मिली है तो लीला के सुनने से मिली है, लीला को देखने से नहीं मिली है। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे अपने प्राण त्यागने की इच्छा रखने वाली दुख में डूबी हुई सीता जी को हनुमान जी ने राम जी की कथा सुनाई, इसलिए जीवित रह गई। 14 बरस के वनवास के पश्चात एक दिन बाकी था, लेकिन भरत जी महाराज तड़प रहे थे। उन तड़पते हुए भरत जी को हनुमान जी ने आकर कथा सुनाई, इसलिए तड़पन बंद हो गई। और भगवान श्री राम भी अपनी की हुई लीला को अपने कानों से सुनते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। कौन ऐसा संसार में बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा प्राणी होगा कि जिसको भगवान की कथा के अलावा और किसी उपाय से शांति मिली हो, ऐसा कोई उदाहरण अपने सामने है नहीं। उस कथा के प्रसंग में अब वाल्मीकि जी महाराज आगे बताते हैं कि भाई पुष्पक विमान में विराजमान होकर भगवान नंदीग्राम में पधारी गए, अपने भाइयों से बड़े प्रेम से मिल लिए और जिन चरण पादुकाओं की सेवा उनके अनुज भरत जी करते थे उन चरण पादुकाओं को लाकर भगवान के चरणों में भरत जी ने समर्पित करते हुए कहा कि हे महाराज, ये आपका धन, ये आपका कोष पहले की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा हो गया है और ये राज्य अब आप संभालिए। राम जी महाराज भरत जी की बात सुनकर के ऐसे हो गए जैसे किसी पर बहुत बड़ा संकोच का भार डाल दिया। भरत जी का प्रेम देख करके भगवान बड़े आनंदित हो गए और उसके बाद भरत जी महाराज ने भगवान से कहा। भरत जी ने कहा कि हे राम, किस कुटिल नीति के कारण से मेरी मां ने ये राज्य मेरे लिए दिया था, मैं अपने अंतःकरण की सरलता के साथ बिना किसी कपट के साथ ये राज्य मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। मैं इस राज्य का भार सहन कर नहीं सकता हूं, जैसे कोई बैल हो वो वजन उठावे वो बछड़ा नहीं उठा सकता, इसी प्रकार से मैं आपका जो दायित्व है उसको कैसे निभा सकता हूं। आपका दायित्व तो आप ही निभा सकते हो। जिस प्रकार से कोई बड़ा भारी बांध टूट जाए और खूब सा जल वहां बहने लगे, उसको बालू की मिट्टी से रोका नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके इस राज्य के प्रवाह को जो आपकी ओर आ रहा है उसको मैं अपने द्वारा रोक नहीं सकता हूं, रोकना उचित भी नहीं है। महाराज, कभी कोई कौवा है वो हंस की गति से थोड़ा ही चल सकता है, कभी कोई चील है वो गरुड़ की गति से थोड़े ही चल सकता है, कभी कोई गधा है वो घोड़े की गति से थोड़े ही जा सकता है। इस प्रकार से महाराज, आपके द्वारा जो काम होने वाला है वो मेरे से कैसे संभव है। कोई वृक्ष लगाए और वृक्ष लगाने के पश्चात वो वृक्ष भी खूब बड़ा हो जाए, खूब उसमें तना हो गया, ऊंचाई भी आ गई, पत्ते भी लग गए उसमें फूल भी आ गए परंतु न फलानि प्रदर्शयन, उसमें फल न लगे, तो वृक्ष लगाने वाले ने जो परिश्रम किया था उसका क्या हुआ। उसी प्रकार से आपकी इस अयोध्या ने, आपके माता पिता ने आपको पाला पोसा बड़ा किया और उस समय फल के समय में आपको वनवास मिल जाए तो ये माता पिता का परिश्रम जैसे व्यर्थ गया है, तो उस व्यर्थ परिश्रम को सार्थक बनाने के लिए, जन जन की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए अब आप इस स्थान को स्वीकार कीजिए। महाराज आप इस पद पर विराजमान होंगे तभी अयोध्या सनात होगी। आप मधुर गीतों को सुनते हुए सोएं और मधुर गीतों को सुनते हुए आप उठें और जनता की दीन भरी वाणी को सुने और उनके मुख से प्रसन्नता की वाणी निकले, ऐसा दिन प्रदान करने के लिए आप इस अयोध्या की राजगद्दी पर विराजमान होइए। जिस प्रकार से महाराज सूर्य है वो आकाश में देदीप्यमान होता है, उसी प्रकार से आप जगत में देदीप्यमान होइए और आप इस आसन पर विराजमान होइए। भरत की बात सुनकर के राम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उसके बाद भरत को भगवान ने अपने भुजाओं में ले लिया और शत्रुघ्न जी के कहने से वहां कई नाई लोग आए और उन नाइयों ने संवार बनाई, राम जी महाराज की संवार बनाई, लक्ष्मण जी की संवार बनाई, भरत जी की संवार बनाई और उसके बाद सब ने स्नान किया। भगवान के साथ सुग्रीव ने स्नान किया, राक्षसराज विभीषण ने स्नान किया, सब भाइयों ने स्नान किया और उनके लिए उत्तम उत्तम वस्त्र लाए गए, उत्तम आभूषण उन्होंने पहने और वे सब उत्तम आभूषणों से बड़े सुशोभित हुए। शत्रुघ्न जी ने सब आभूषणों की व्यवस्था की थी राम जी के लिए, औरों के लिए भी, और शत्रुघ्न जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। देखो ऐसा भी आता है सुनने में कि जिस प्रकार से राम जी महाराज ने ये राज्य भरत जी को दिया था, भरत जी महाराज राज्य का तो कार्य करते थे बहुत कम, वो तो केवल भजन करते थे, राज्य का सारा कार्य शत्रुघ्न जी देखते थे। ऐसा भी आता है कि भरत जी हैं वो दिन में थोड़ा काम करते, रात भर भजन करते थे भगवान के वियोग में। वियोग का भजन होता है वो भजन थोड़ा भी बहुत होता है, कहने में थोड़ा होता है लेकिन बहुत होता है। संतों ने बताया कि लीजे नाम निराश, निराश होकर के नाम लो। निराश किससे हो? संसार से निराश होकर, और भगवान के विरह में भगवान का नाम ले हो। तो वो विरह में जो भजन होता है थोड़ी देर का भजन भी बहुत होता है। वो विरह कोई बाहर से दिखता नहीं है, विरह उसको नहीं बोलते कि हम रोते रोते नाम लेते हो। हमको भी ज्ञान ना हो कि हम रो रहे हैं, भीतर में एक तड़फन होती है, एक टीस होती है। वो देखो संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अपने अंदर दुख होता है बाहर से छिपा के चलते हैं, पता ही न चलने दें कि हमारे अंदर कोई दुख है क्या। किसी आदमी को घाटा लगता हो और उसके मन में कितनी चिंता है लेकिन ऊपर से वो प्रदर्शित नहीं करता। किसी आदमी को खूब बड़ा मुनाफा हो लेकिन समझदार होता है वो उसको प्रदर्शित नहीं करता। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति में भी यही बातें चलती हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है वो ऊपर से जितना अपने को प्रदर्शित नहीं करता उतनी उसकी भक्ति अंदर ही अंदर बड़ी पुष्ट होती चली जाती है। वो प्रच्छन्न भक्ति होती है, ढकी हुई भक्ति होती है, बहुत लाभ करती है। जिस प्रकार से छिपा हुआ पाप होता है वो बड़ा नुकसान करता है, उसी प्रकार से छिपी हुई भक्ति बहुत लाभ देती है। संतों के श्वास श्वास में पीड़ा होती है, जैसे कोई श्वास लेते हो और अंदर कोई अटक जाए, श्वास नली में कोई अटक जाए तो पीड़ा होती है, ऐसे संतों के श्वास श्वास में भगवान के विरह की पीड़ा होती है कि हे नाथ तुम्हारे बिना समय जा रहा है, क्या करें, भजन नहीं होता। अच्छे अच्छे संतों की बात है, बताया था ना कि महाराष्ट्री के पास में एक संत रहते थे, तो रात्रि के अंदर महाराष्ट्री उठे तो वे संत थे, वो रो रहे थे बैठे। तो महाराष्ट्री ने पूछा कि क्या बात होगी, रोते क्यों हो? तो संत और फपक पड़े, खूब रोए वो कि क्या बात हुई, रोए क्यों, क्या बात है? कि मेरे पर फौजदारी मुकदमा हो गया। कि फौजदारी मुकदमा हो गया? कि हाँ फौजदारी मुकदमा हो गया। कैसे हो गया? कहाँ फौजदारी बाबा, आपके तो पास कुछ भी नहीं। कि कैसे क्या, मेरे इतने श्वास बिना भगवान के भजन के जा रहे हैं, भगवान का मिलना हुआ नहीं और मैं मृत्यु की तरफ दौड़ रहा हूँ, मेरे श्वास का हिसाब लिया जाएगा तब क्या होगा? इस कारण से मेरे मन में बड़ी तड़फन हो रही है, तड़फन, रो रहे हैं। वो रोना भाई करोड़ों रुपए के मिलने के हंसने की अपेक्षा कितना ऊंचा, महान है, कितना आनंद देने वाला है, उसको कोई बता नहीं सकता है। तो हमारे शत्रुघ्न जी महाराज इस प्रकार से सारा राज्य का कार्य देखते थे और भरत जी महाराज भगवान के विरह में डूबे रहने वाले थे। इधर शत्रुघ्न जी ने सबका श्रृंगार करवाया और दशरथ जी की जितनी पत्नियां थी 350 पत्नियां थी वाल्मीकि रामायण के अनुसार, बताई थी आपको, तीन तो मुख्य थी, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी, तीन तो मुख्य पत्नियां और बाकी 350 थी इनके सहित, वे सब के सब 347 और, ये सब और पत्नियां थी, सब ने सीता जी का श्रृंगार किया। सबके मन में सीता जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ। सीता जी को सब गोद लेती हैं, कोई पुचकारती हैं, कोई सिर पर हाथ रखती है, छाती से लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि सीता आज राजगद्दी पर राम जी के साथ में बैठेगी और वो लंका की आज महारानी, अयोध्या की आज महारानी बनेगी। जिसने लंका में इतना कष्ट पाया है उस सीता को देख देख करके सबके मन में क्लेश भी हो रहा था, तकलीफ भी हो रही थी। पुत्रवत्सला कौशल्या तो भाई उस समय में देखा कि भाई जितनी सुग्रीव के साथ में, सुग्रीव के बांदरों के साथ में आई हुई पत्नियां हैं, इनका कौन ध्यान रखे? तो कौशल्या जी ने खुद ने सब बंदरियों का स्वागत किया, सत्कार किया, कपड़े दिए, आभूषण दिए, सबका श्रृंगार किया। उसके बाद शत्रुघ्न जी महाराज ने सुमंत्र सारथी से कहा कि आप एक रथ तैयार कीजिए, जल्दी से जल्दी रथ तैयार कीजिए, इसी रथ में विराजमान होकर भगवान नंदीग्राम से अयोध्या